नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दादू याजो से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की 3 दिन की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। यात्रा के दौरान उन्होंने कई नेताओं से द्विपक्षीय बातचीत की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, प्रभावी लेखा परीक्षण कार्यों के लिए प्रौद्योगिकी का विकास जरूरी है। झारखंड में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रांची में चुनाव आयोग ने शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुंडा भूमि आवंटन मामले में मुकदमा चलाने की राज्यपाल की मंजूरी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री सिद्दरमैया की याचिका खारिज की। चेंगडू ओपन टेनिस में आज पुरुष डबल में भारत फ्रांस की यूकी भामरी और अल्बोनो ओलिवेट्टी की जोड़ी का मुकाबला फाइनल में फ्रांस की शीर्ष वरीयता प्राप्त साडियो डोमिपिया और फेबियन रेबॉल की जोड़ी से हो रहा है। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की अमरीका यात्रा के सफल समापन के बाद आज तड़के दिल्ली के लिए रवाना हो गये। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी क्वाड नेताओं के सम्मेलन और भारतीय अमरीकी समुदाय के कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन को संबोधित किया और अन्य देशों के नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने अपने दौरे की शुरुआत अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बैठक से की। राष्ट्रपति बाइडेन ने इसे विशेष महत्व देते हुए इस बैठक की मेजबानी वेलमिंगटन डेलावेयर में अपने निवास पर की। बैठक के दौरान जिन दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए उनमें इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट और भारत अमरीका ड्रग पॉलिसी फ्रेमवर्क शामिल है। क्वाड नेताओं के सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि क्वाड स्वतंत्र, खुले, समावेशी और समृद्ध हिंद प्रशांत के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि क्वाड समूह का महत्व परस्पर सहायता, साझेदारी और एक दूसरे के पूरक के रूप में बना रहेगा। क्वाड नेताओं ने हिंद महासागर में नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री मोदी और भारत की सराहना की। क्वाड एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए क्वाड नेताओं ने क्वाड वेलमिंगटन घोषणा को भी अपनाया। कैंसर मूनशॉट कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत GAVI वैक्सीन अलायंस और क्वाड पहल के तहत हिंद प्रशांत देशों के लिए 4 करोड़ वैक्सीन खुराक का योगदान देगा। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एंटनी अल्बानीज के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। प्रधानमंत्री की यात्रा का एक अन्य आकर्षण अमेरिका द्वारा 297 पूर्व शेषों की वापसी रहा जो भारत से चोरी या तस्करी करके ले जाया गए थे। इन्हें शीघ्र ही स्वदेश लाया जाएगा। यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में नसाओ कॉलेजियम में भारतीय अमरीकी समुदाय के एक बड़े कार्यक्रम में भाग लिया। भारत अमरीकी द्विपक्षीय संबंधों में प्रवासी भारतीयों की भूमिका की सराहना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनका कौशल और प्रतिभा बेजोर है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए PUSHP मंत्र भी दिया। बाद में प्रधानमंत्री ने MIT स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा आयोजित एक गोलमेज सम्मेलन में न्यूयॉर्क में तकनीकी उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियों के साथ बातचीत की। ये गोलमेज बैठक मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैव प्रौद्योगिकी और सेमीकंडक्टर तकनीक पर केंद्रित थी। प्रधानमंत्री ने भारत में आर्थिक परिवर्तन, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, बायोटेक और हरित विकास का उल्लेख किया तथा कंपनियों को इन क्षेत्र में भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली, कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सभा खालिद अल हमद अल सभा और फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बातचीत की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने प्रधानमंत्री मोदी की अमरीकी यात्रा को बेहद सफल बताया है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान आयोजित समुदाय कार्यक्रम से स्पष्ट है कि अमरीका में भारतीय अमरीकी समुदाय ने कितना मजबूत संपर्क स्थापित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जोर देकर कहा कि प्रभावी लेखा प्रशिक्षण कार्य के लिए प्रौद्योगिकी का विकास जरूरी है। राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में सर्वोच्च लेखा संस्थानों के एशियाई संगठन की 16वीं सभा का उद्घाटन करते हुए कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र ने के लेखा परीक्षण का अधिकार पारंपरिक लेखा परीक्षण से आगे बढ़ गया है। इसमें लोक कल्याण योजनाओं और परियोजनाओं के प्रभाव का आकलन करना शामिल है, जिससे सभी नागरिकों की सम्मान सेवा सुनिश्चित होती है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी संचालित दुनिया में प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अधिक से अधिक सार्वजनिक सेवाएं तेजी से प्रदान की जा रही है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि आज दुनिया एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डाटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग और भूस्थानिक प्रौद्योगिकी जैसे अभ्यर्थी डिजिटल प्रौद्योगिकी आधुनिक शासन की रीढ़ बन रही है। उन्होंने कहा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई डिजिटल अर्थव्यवस्था के कामकाज और नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए आधार के रूप में कार्य करता है। उन्होंने कहा कि डिजिटल पहचान से लेकर ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म तक डीपीआई में सार्वजनिक सेवाओं और वस्तुओं की डिलीवरी में क्रांतिकारी बदलाव लाने, उन्हें अधिक सुलभ, कुशल और समावेशी बनाने की क्षमता है। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के देश की सार्वजनिक वित्त व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान ने केग कार्यालय को व्यापक अधिकार और पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की है। राष्ट्रपति ने कहा कि केग का कार्यालय संविधान निर्माताओं की उम्मीदों पर खरा उतरा है। चार दिन के सम्मेलन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की जाएगी। झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधु के साथ मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, सभी डिवीजन के आयुक्तों, क्षेत्रीय महानिरीक्षकों, सभी जिलों के लिए जिला चुनाव अधिकारियों, सभी पुलिस उप महानिरीक्षकों और राज्य के सभी पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इससे पहले चुनाव आयोग ने प्रलोभन मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के निर्देश केंद्र और राज्य के प्रवर्तन एजेंसियों को दिए। आयोग ने राज्य में निर्बाध और शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव कराने के निर्देश राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी और राज्य पुलिस के नोडल अधिकारी तथा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के नोडल अधिकारियों को दिये। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कल स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुचारू मतदान के सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस चरण में 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इन जिलों में 25,78,000 मतदाता 239 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख तारिक हमीद कड़ा और अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी प्रमुख है। मतदान के लिए कुल 3,502 केंद्र बनाए गए हैं और इन सभी में वेबकास्टिंग तथा मतदाताओं के लिए बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। इस चरण के लिए चुनाव प्रचार कल शाम समाप्त हो गया। केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में कराया जा रहा है। मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। पहले चरण में 18 सितम्बर को 61% वोट डाले गए थे। तीसरे चरण में चुनाव में 40 विधानसभा सीटों के लिए 1 अक्टूबर को मतदान होगा। कर्नाटक उच्च न्यायालय में मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण मूडा भूमि आवंटन मामले में मुकदमा चलाने की राज्यपाल की मंजूरी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री सिद्दरमैया की याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति एम नाग प्रसन्ना की पीठ ने कहा कि राज्यपाल स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं। राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने 16 अगस्त को मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्यवाही की अनुमति दी थी। भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता टीजे आभारम, स्नेमयी कृष्णा और प्रदीप कुमार ने राज्यपाल से मामला शुरू करने की अनुमति मांगी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सिद्दरमैया की पत्नी पार्वती को 3.16 एकड़ जमीन के बदले में मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण ने 14 आवास स्थल मिले। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे सरकारी खजाने को 55.80 करोड़ रूपये का नुकसान हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के शासक मंडल की 9वीं वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए उज्बेकिस्तान के तशकंद पहुंच गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि वो कल बैठक में शामिल होगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में किसानों और किसान संगठनों के साथ बातचीत की। बैठक के बाद श्री चौहान ने कहा कि करीब 50 किसान नेताओं ने उनसे मुलाकात की। श्री चौहान ने कहा कि किसान संगठनों ने फैसला की कीमतों तथा फसल बीमा के संबंध में उनके सुझाव दिए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।